بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. میں اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اور پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں گے. یہ پروگرام شہر مقدس قم سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور پروگرام میں مختلف اعتقادی اور عقیدتی مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے شفاعت. شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کس کا حق ہے؟ اور شفاعت کن شرائط کی حامل ہے؟ اور کس کی شفاعت کی جائے گی؟ اور کون شفاعت کا مستحق ہے؟ خدا کے علاوہ کیا غیر خدا بھی شفاعت کا استحقاق رکھتے ہیں؟ یہ ایسے کچھ سوالات ہیں جن پہ گفتگو ہوگی، اور ہمارے معزز مہمان بھی ان سوالات کا جواب دیں گے. لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
شفاعت ایک ایسا مسئلہ ہے جسے قرآن مجید کی مختلف آیات اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں گنہگاروں کی شفاعت کا ذکر ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. یہ اور بات ہے کہ شفاعت کے بھی کچھ مراحل اور شرائط ہیں. یوں تو روایات کے اعتبار سے کچھ مومنین کو بھی حق شفاعت حاصل ہے. خود شفاعت کا تصور انسان کو توبہ کرنے اور اپنے گناہوں سے باز رہنے کے لیے کافی مددگار ہے، اس لیے کہ اگر انسان شفاعت کا تصور نہ کرے تو گنہگار اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے نجات سے مایوس ہو جائے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اب سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو انسان گناہ سے توبہ کے بجائے اور گناہ کرے گا. لیکن اگر اسے شفاعت کا یقین ہو تو گناہ پر نادم ہو کر اپنی آئندہ کی زندگی سنوار سکتا ہے.
ناظرین، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خداوند کریم کے اصول اور احکام پہ عمل کر کے صحیح معنوں میں بندگی کا حق ادا کریں. تو آئیے پروگرام میں ساتھ دیجیے ہمارا. حسب معمول آج بھی ہم نے زحمت دی ہے پروگرام میں استاد اور اسلامیات کے ماہر جناب مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ کو. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ مسلسل زحمت کر رہے ہیں پروگرام میں. تشریف
کا بھی شکریہ.
جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں پہ شفاعت کی گفتگو ہونی ہے، اور شفاعت بہت ہی اہم اور ایک پیچیدہ بھی موضوع ہے، جس ایک ایسی اصل اور حقیقت ہے جس کو اسلام نے کافی سراہا ہے، اور کافی اس پہ روایت اور آیات ہے جن کے بارے میں ہم آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن شفاعت کی گفتگو کرنے سے پہلے، پچھلے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہاں ایک اہم سوال تھا، وہ تھے قیامت کے دن جو گواہ ہوں گے ہمارے اعمال کے، وہ گواہ کون لوگ ہوں گے، اور وہ کیوں کر گواہی دیں گے، حالانکہ خداوند کریم ہر چیز سے واقف ہے، عالم ہے، آگاہ ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ شفاعت کی گفتگو کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب ہمیں چاہیے، تاکہ ناظرین بھی اپنی گفتگو جو رہ گئی تھی اس سے مکمل طور پہ استفادہ کر سکے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. الحمد والثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا سیما خاتمهم وافضلهم ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. گزشتہ جو گفتگو تھی اس سے مربوط یہ جیسا ہے، شاہدین اور گواہان قیامت. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اس لیے کہ وہاں پر کچھ گروہ ہوں گے انسانوں کے جو اپنے ان اعمال کا انکار کر دیں گے، تو اس وقت اس لیے کہ وہ خود اقرار کریں پہلے یہ بات، اور پھر اس کے بعد اس کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ گواہی دیں۔ آیت مجیدہ ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، نور 24 نمبر آیت ہے۔
صحیح.
یہ سورہ یاسین میں بھی ہے، الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو یہاں پر فی الواقع جب انسان کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ انسان انکار کر دے گا۔ جبکہ اس گزشتہ گفتگو میں ہم نے ایک جملہ بولا تھا، نستنسخو ما کنتم تعملون،
تمام
نسخہ برداری
برداری
اعمال کی وہ پہلے سے موجود ہے۔ اب دیکھیں ویڈیو بنتی ہے تو اس واقعے اور صحنے سے ویڈیو بنتی ہے، پہلے ایک شے موجود ہوتی ہے اس سے بنتی ہے۔
بنتی ہے بالکل،
کاپی اگر کرتے ہیں، لکھائی ہوتی ہے، رائٹنگ ہوتی ہے، اس سے ہم کاپی
کاپی
کرتے ہیں،
کرتے ہیں بالکل،
لیکن نستنسخو کا معنی یہ ہے کہ خدا کے پاس وہ اعمال پہلے سے موجود ہیں، یہ جو ہم عمل انجام دیں گے یہ اس کی کاپی ہیں جو خدا کے پاس موجود ہے، نام ہے عمل۔ اب اس کے باوجود کہ خدا کو علم ہے اور اسی طرح جو اس کے اولیاء ہیں، بندگان خاص ہیں، پیغمبر اسلام گرام ہیں اور ائمہ عصر، امام عصر ہیں، وہ چونکہ مظہر علم پروردگار ہیں، جس طرح کہ خدا کو ہمارے علم، ہمارے اعمال کا، ہمارے عمل سے بھی پہلے علم ہے، اسی طرح انبیاء، ہمارے نبی کو اور ہمارے امام کو بھی ہمارے عمل سے پہلے اس کا علم ہے۔ وہ جو میں نے حوالہ دیا تھا حضرت آیت اللہ باہجل کی
بالکل
گفتگو کا، کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں ہمارے کان بعد میں سنتے ہیں، امام پہلے
پہلے
سنتے
سنتے
ہیں،
ہیں،
اور یہ شب قدر میں بھی آتا ہے کہ تمام مقدرات امام پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں احساس حضور امام کا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے انجام دینے سے پہلے ان کا، اس کو خدا، امام کو بھی علم ہوتا ہے اور
بالکل
خدا کو بھی علم ہوتا ہے۔ اور لا جبر ولا تفویض، بل الامر بین
بن
الامرین،
الامرین
یہ مکتب اہل بیت کا ایک امتیاز ہے جس نے یہ اس میں بہترین انداز میں جواب دیا ہے کہ خدا کو جو علم ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آگے آدمی انسان مجبور ہو جاتا
مجبور
ہے، نہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مجھے علم ہے کہ کل مثلا یہ آج کا جو پروگرام ہے اسی ٹائم میں بشیر صاحب بھی آئیں گے اور اس کی دوسری ساتھی بھی آئیں گے، مجھے علم ہے فلاں فلاں افراد آئیں گے، تو میرا علم نے تو آپ کو مجبور نہیں
مجبور
کیا،
نہیں کیا بالکل،
خدا کا علم کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے، خدا کا علم یہ ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار کے ساتھ آئے گا اور یہ عمل انجام دے گا،
صحیح
بس علم خدا تابع ہے اور وہ متبوع ہے فعل اور عمل انسان۔ اب جب یہ قیامت کے دن نامہ عمل پیش ہوگا، فرشتے بھی ملائک بھی لکھیں گے، تو کچھ افراد ہوں گے جو انکار کر دیں گے، خداوند متعال ان کی زبانوں پر، ان کے ہونٹوں پر جو ہے تالا لگا دے گا، نختم علی افواہ، ہم مہر لگا دیں گے، وہ خاموش ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے جو ہاتھ ہیں ان کو کہیں گے تم گواہی دو،
گواہی دو، بیان کرو،
وتشہدوا ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ تو اس صورت میں یہ لوگ کہیں گے، دوسری آیت میں، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کی ہوتی،
کیوں تھی؟
جلود اور اس اپنے جلد کو کہیں گے، قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اس نے ہر چیز کو آج
زبان
زبان دے دی ہے اور بولنے کا حق دے دیا ہے، وہو خلقکم اول مرۃ۔ تو یہاں سے قیامت کے جو گواہ وہاں پر گواہی کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر انکار کریں گے کچھ افراد، ان کو سمجھانے کے لیے، لہذا سب سے پہلے خود ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، اس کے بعد باہر والے گواہان بھی ہوں گے، ان کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے،
لسٹ ہے
ان میں
بالکل،
انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، کیف اذا جئنا بکا علی ہؤلاء و جئنا علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے گزشتہ امتوں پر تجھے گواہ قرار دیا ہے، خود پیغمبر اسلام اس امت کے بھی اور گزشتہ امتوں کے بھی کیا ہیں؟ وہ
گواہ،
گواہ ہیں۔
صحیح۔ بہت بہت شکریہ قبلہ مہدوی صاحب. تو اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. اپنی گفتگو میں ہم نے شفاعت کو آج موضوع سخن قرار دیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین بھی آپ سے بھرپور استفادہ کریں گے. سب سے پہلے شفاعت کی تعریف, یعنی شفاعت کسے کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں؟
جی, شفاعت کا جو موضوع ہے بہت مہم ترین موضوع ہے. ہمارے
بالکل
استاد کی تعبیر ہے کہ یہ جو علوم ہیں آل محمد کے, ویسے فقہ پر زیادہ کام ہوتا ہے ہمارے حوزہ علمیہ میں بھی, مدارس میں اصول پر بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن تفسیر پر اور اسی طرح پھر جو قیامت کے احوالات ہیں اس پر بہت کم کام ہوتا ہے. اگر مطالعات کریں جو دانشمند حضرات ہیں, واقعاً بہت پیش رفت ہوگی اس میں
صحیح.
اور کافی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. شفاعت کی جو تعریف کی گئی ہے, شف مقابل ہے وتر کے, جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے. نماز بھی شف ہے اور وتر ہے.
ماتر
وتر یعنی ایک عدد اور شف یعنی دو
دو
عدد. شف کا معنی ہے ضم الشیء الی مثلہ, ایک شے کو جو اس کی مثل ہے اس کے ساتھ ضمیمہ کرنا. مثلا ایک رکعت ہے اس کے ساتھ دوسری رکعت کا ضمیمہ, اس کو کہیں گے شف. چونکہ دو رکعت ہیں لہذا اس کو شف
شاہ
بولیں گے. شفاعت کیا ہے؟ یہ راغب اصفہانی لغت میں یہ اس کا معنی کرتے ہیں. شفاعت کہتے ہیں الانضمام الی آخر ناصرا لہ وسائلا عنہ. اصلی جو لفظ ہے, اصلی جو معنی ہے اس کا, وہ محفوظ ہے اس میں. یعنی دو ہیں یہاں پر, کہ ایک شخص ہے وہ دوسرے کے ساتھ دوسرے کو کیا کرتا ہے, درخواست پیش کرتا ہے کہ وہ جو اس کی مشکل ہے, جو درخواست ہے وہ صاحب اور مالک کی طرف اس کو پہنچا دے اور اس کی مشکل کو حل کر
حل
دے.
کر دیں.
یہاں پر میں ولایت کا شفاعت کے ساتھ کیا فرق ہے, ولایت کا شفاعت کا نصرت, وکالت,
ہاں,
مشاورت,
یہ جو
اس سے کیا فرق ہے؟
مشاورہ
جو کہتے ہیں کہ نصرت ناصر ہے, مثلا ایک شخص ناصر ہے, مددگار ہے, ایک وکیل ہے. یہاں پر ان تینوں چیزوں میں, شفاعت, نصرت, وکالت, ان میں جو چیز اخذ کی گئی لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انسان اعمال انجام دے سکتا ہے, کام اپنا کر سکتا ہے, جو باقی اس کے اختیار میں نہیں ہے. مثلا وکیل عدالت میں ہر آدمی کا دعویٰ دائر کرنا اور
صحیح.
دفاع کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے, اس کے لیے وکیل کی ضرورت ہے. لہذا کچھ کام وہ انجام دے گا, ڈاکومنٹس اور وہ سارے خود تیار کرے گا, آگے دفاع کس نے کرنا ہے وہ
وکیل
وکیل
نے
نے کرنا ہے. ناصر بھی اسی طرح ہے. مثلا ایک شخص جوان ہے, اس کا والد ہے, اب وہ پیسہ کما لیتا ہے, کہاں پر خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, مصلحت کیا ہے, اپنے والد سے مشورہ لیتا ہے. بس اس کا والد کیا ہے, اس کے لیے ناصر ہے.
ناصر
لیکن جو ولایت ہے اس میں یہ ہے کہ شخص کو کسی چیز کا بھی اختیار اور قدرت نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرماتا ہے ان ولی الذی من یتول الصالحین, میری سرپرستی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جو صالحین کی سرپرستی کرتا ہے. تو پیغمبر اسلام وہ تحت ولایت پروردگار ہے.
پروردگار ہے.
یہ ایک تھوڑا سا فرق تھا بس, ولایت اور شفاعت کا یہ فرق ہو گیا. مین جو اس میں پوائنٹ ہے شفاعت میں, کہ کچھ کام ایک کام ایک حد تک وہ خود انسان انجام دے اور باقی جو رہ گیا ہے وہ
صحیح, جو اس کے توان میں نہیں ہے,
جو اس کی
جس
توان
توان
میں
میں نہیں
نہیں
ہے,
ہے
بالکل
وہ اس کے لیے جو شافعین ہیں وہ
شاف
اس کو
انجام
انجام دیں
دیں.
گے. بس شفاعت فی الواقع سبب موجود ہے اس کے پاس, لیکن کامل نہیں ہے. اس کا جو عمل ہے وہ کامل نہیں ہے, ناقص عمل ہے. لہذا شفاعت جو ہے یہاں پر وہ اس سبب کی تکمیل ہے, اس سبب کو کمپلیٹ کرتا ہے یہ شفاعت جو ہے. اور شفاعت میں استقلال نہیں ہے کہ خود مستقل طور پر شخص کے پاس عمل ہو یا نہ ہو, آئے اور اس کو جہنم سے نکال کر بہشت میں بھیج دے, یہ شفاعت میں یہ اختیار اس میں نہیں ہے. بلکہ کچھ کام انسان خود کر کے آئے گا اور کچھ کام جو نہیں انجام دے سکا ہے تو وہ وہاں پر شافعین ہیں جو خدا نے متعال نے متعین کی ہیں, ان کی وجہ سے وہ جہنم سے اسے چھٹکارا ملے گا. شفاعت پھر اس کا جو دائرہ کار ہے وہ مادیات اور تکوینیات ہیں. کچھ افعال ہیں جو دنیا میں انجام دیے جاتے ہیں, خارج میں موجود ہیں, واقعیت رکھتے ہیں, اور کچھ شفاعت جو ہے ان موارد میں ہے جہاں قانون ہے, جہاں حکومت ہے, جہاں معاشرت ہے, معاشرتی
بالکل
سسٹم ہے,
سسٹم
وہاں
ہے,
پر
اعتبار ہے.
سوسائٹی ہے وہاں
بالکل
پر. تو جو شفاعت ہے زیادہ اس کا استعمال جو ہے قوانین اور احکام میں یہاں پر, اور حکومت میں, معاشرت میں, معاشرے میں
صحیح
اور سوسائٹی میں اس کا زیادہ काम होता है और फायदा देती है ये शफात। अगर किसी ने काम कराना है किसी से तो वो किसी को सफारिश के तौर पर
सफारिश करते
ले
हैं,
जाता है,
यानी भाई सफारिश जैसे कहते हैं
सफारिश है दूसरे लफ्जों में।
दूसरे।
लेकिन जो तकवीनियात है, मसलन प्यास लगती है मुझे, तो यहां सफारिश की जरूरत नहीं है, पानी उसका राह हल है, खुदा ने खुद करा दिया।
लेकिन जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये सफारिश आम सफारिश नहीं है जो आजकल की जाती है, बिना उसके उसके पास कोई चीज हो फिर सफारिश की जाती है, भाई
जी
इसको जो है ना इसका
सफा
तो हल
इसका
कीजिए।
लुग भी माना आम है, यानी
आम
वो
है
दोनों मुवारद को शामिल हो जाता
सही
है। लेकिन क्या फरमाते हैं शफाती इन्नमा ले अहले कबाइर,
कबाइर
अहले कबाइर के साथ मखसूस है। और ये शफात असलन है भी कियामत के दिन। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बरजख के लिए खौफनाक हूं, वगरना शफात कियामत के दिन है, आप बहिश्त में चले जाएंगे। आप बरजख का सामान करके आए, कियामत के दिन पैगंबर गिरामी सलाम अहले बैत अलैहिम सलाम आपकी सिफारिश करेंगे वहां पर। तो इस तरह से शफात जो है इसका जो दायरा है वो कानून है और हकूमत है और अदालत है, इज्तमाहियात है, सोसाइटी है, यहाँ पर सफारिश और इस शफात का काम
काम
चलेगा
चलेगा।
और तकवीनियात में वहाँ पर उसका नहीं होगा। लिहाजा जो शफी है वो भी जब शफात करेगा तो उसका भी दायरा महदूद है आगे। ऐसा नहीं है कि खुदा से कहे कि तेरी जो सल्तनत है, तेरी जो हुकूमत है, तेरी जो मौलवियत है, सरपरस्ती है, इसको हटा ले और मेरा जो राबता है आपके साथ अबूदियत वाला वो भी ख़त्म कर दे और मुझे इस अजाब से निजात दे दे। ऐसा मुतालबा नहीं कर सकता है शफी खुदा से। और ये भी नहीं कह सकता है कि तेरा जो कानून है उस कानून को ख़त्म कर दे या कानून में तब्दीली ला दे ताकि फिर मैं अजाब में गिरफ्तार ना हो।
गिरफ्तार
तीसरा मरला जो है वो ये है कि अगर कानून भी बाकी हो, तेरी हुकूमत भी बाकी हो, तो जो जजा और सजा है वहां पर आकर अपनी जजा और सजा को तब्दील कर दे ताकि मैं अजाब ना हूं। इन तीनों मरहले में जो शफी है वो सिफारिश नहीं करेगा, बल्कि इन तीनों मरहले को कबूल करते हुए कि एक विलायत खुदा उसको कबूल करे, दो उसके कानून और उसकी हुकूमत वो कबूल करे,
करोगे
और तीसरा जो उसकी सजा है और जजा है उसको भी कबूल करे। लेकिन एक तीसरा रास्ता है जिसके जरिए से वो वारिद होगा, वो है कि रहमत परवरदिगार के जरिए से, करम और सखाए परवरदिगार की वजह से, फक्र और एहतियाज अब्द के जरिए से, और खुद जो शफी है उसका जो कुर्ब है खुदा के नजदीक, जो मकाम है खुदा के नजदीक, उसके जरिए से
से
वारिद होगा और उस शख्स को जहन्नम से
नजात
निकाला जाएगा।
नजात। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी वजाहत दी है और बहुत ही अच्छे अंदाज में और अच्छे मतलब, उम्मीद है नाजरीन ने इस्तेफादा किया होगा। अगर आप इजाज़त दें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर खदमत है। तो नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम राह निजात, गुफ्तगू हो रही है शफात के सिलसिले में। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा, हमारा साथ दीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
قال الله تعالى لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا। इरशाद खुदावंदी है, किसी को शफात का इख्तियार न होगा सिवाय उसके जिसने रहमान से अहद लिया।
नाज़रीन फिर से खैर मकदम कहते हैं आपको, और प्रोग्राम में हसब मामूल हम आपकी कॉल्स के मुंतजर हैं। जो भी कोई सवाल हो यहाँ पे मौलाना हाजिर हैं और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आइए साथ दीजिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कि मतलब बाज़ आयात जो है कुरान की देखने में आता है, जैसे बाज़ आयतों में इशारा हुआ है कि किसी को भी हक नहीं है कि वो शफात करे, सिर्फ शफात जो है हक है अल्लाह तबारक व तआला का। हम कुछ वजाहत चाहते हैं इस सिलसिले में।
कुरान मजीद में बतौर कुल्ली इजमाली तौर पर 7 किस्म की आयात आई हैं शफात के बारे में,
7 किस्म
सात किस्म की आयात
सही
हैं। एक किस्म जो है वो इनडायरेक्ट है और बाकी जो है डायरेक्ट शफात पर ही बोलती है। पहली आयात जो है जिसमें यही जो आपने सवाल फरमाया है, वो ये है कि गैर खुदा को हक शफात हसन नहीं, मा लकुम मिन दून ही मिन वली
वला
वला शफी,
शफी।
परवरदिगार के अलावा किसी को हक शफात हासिल नहीं है। या दूसरी आयत में है कुलिल्लाह अशफा जमीया, जुमर सूरह जुमर 44 नंबर आयत। तो इस आयत में आयत शफात को मुनहसिर कर दिया गया है खुदावंद
खुदा
मुताल में
का
कि फकत व फकत खुदा ही शफात करेगा। एक ये किस्म है। दूसरी किस्म ये है जिसमें बुतों की शफात की नफी की गई है। जब वो बुत परस्त कहते थे हा उला ए शफा उना
शफाउना
इंद अल्लाह, यूनुस 18 नंबर है, तो ये उसको कहते थे कि ये हमारे शफा हैं, हमारी शफात करेंगे। और उनका नजरिया ये था ले युकर्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फ़ा, हम इनके जरिए से खुदा के
खुदा के
नज़दीक क़ुर्ब
करीब
हासिल
बात
करते
करते
हैं।
हैं।
फिर वाकई उनको जो इश्तबाह हुआ था वो ये था कि खुदा तक हमें रसाई हासिल है नहीं, हम उसके लिए एक वसीले की ज़रूरत है। तो वो फरिश्ते हैं, अंबिया है, औलिया है, फिर कहते हैं कि अंबिया और औलिया का भी उसके साथ भी हमारा ज़्यादा वो नहीं है, तो उनकी खातिर फिर एक बुत बना लिए उनके एक आइडियल के तौर पर, मिसाल के तौर पर। फिर यहाँ से बुत परस्ती का रिवाज शुरू हुआ। ये तारीख़चा मैं आपको उसकी तरफ
सही
इशारा कर रहा हूँ। तो कुरान मजीद इशारा करता है इनके अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदिन यब्तशून बिहा अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आजान यस्मऊन बिहा कुल इदउ शुरकाअकुम। कुरान फरमा रहा है कि तुम जिनको अपना शरीक करार देते हो, शफी करार देते हो, उनके पास कौन सी ताकत है? आया उनके पास पाँव हैं कि जिनके जरिए से वो चल कर जाएं, आपकी मदद करें? उनके हाँ हाथ हैं कि वो आपकी मदद कर सकें, उनके यहाँ आंखें हैं कि वो देख सकें, उनके कान हैं कि वो सुन सकें। अगर ऐसा नहीं है, यानी जिसके अंदर अपनी मुश्किल हल करने की ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है, तो वो फिर दूसरों को कैसे वो मुश्किल
कैसे
हल कर
मुश्किल कर
सकता है?
सकता है। बिल्कुल
ला यसलुभु जुबाब, वो जो दूसरी आयत में है कि
सही,
वो एक मक्खी
मक्खी
को
को
नहीं
अपने
उठा
ऊपर
सकता
रखे
है
हटा
अपने
सकते हैं।
ऊपर से,
सही
तो वो दूसरों की कैसे मदद कर सकता है? तो यहां पर बुत की जो शफात थी उसकी इन आयत में नफी
नफी
की
की
गई
गई।
है। बस पहली किस्म यह है कि खुदा में शफात मुनहसर है। दूसरी किस्म जो आयत है वो है कि बुत शफात नहीं कर सकते
नहीं
हैं
कर
इसलिए
सकते
कि
बुत
उनकी
वगैरह। सही
ताकत नहीं है। तीसरी किस्म जो आयत है वो है कि असलन शफात है लेकिन शफात करने वालों की शफात उनके लिए नफामंद नहीं होगी। ला तनफाउम शफात शाफे, शफात है लेकिन इन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। या दूसरी आयत में ला युकबलु मिनहा शफात वला युखद मिनहा अदल वला हुम युनसरून। ये क्यों उनके लिए नहीं है? इसलिए कि जालिमीन है वो, जालिमीन के लिए वली जालिमीन है, ला शफीउन वला हमीमुन, जालिमीन के लिए ना कोई शफी है और ना उसका कोई हामी और मददगार है। और आयत में है कि जालिमीन कौन है? वो है जो काफिर हों। बस यहां तीन किस्म की ये हो गई। अब ये जो सवाल किया गया है कि शफात मुनहसिर है खुदा में, या बुतों से भी शफात की नफी कर दी गई है, या शाफे हैं लेकिन फायदा नहीं है उसका, तो ये तीन किस्मों की हमने आयात पढ़ ली। अब अगर चौथी किस्म हम ना पढ़ें तो उस सूरत में ऐसे बन जाएगा जैसे हम कहें ला तकरबु सलात और
वान
आगे हम ना पढ़ें वान तुम
तुम
सुकारा, उसको
सुकारा।
ना पढ़ें कि तुम नमाज के करीब ना हो ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। हम फकत पढ़ लें ला तकरबु सलात, खुदा ने भी हुक्म दिया है भी नमाज के नजदीक ना जाओ। तो यहां पर भी अगर हम इन आयात को पढ़ें और जो दूसरी आयात है उसको ना पढ़ें, इसलिए कि इन्नल कुरान युफस्सिरु बअ्दुहु बअ्दा, वो एक दूसरे की तफसीर करता है, जब आयात को आयात के साथ मिलाते हैं तो वो बताता है। तो दूसरी जो आयात हैं वो ये कहती हैं कि शफात है मनजल्लजी यशफ़ इंदहु इल्ला बिइज़्निह,
बिल्कुल
या दूसरी आयत है ला यमलकून शफात इल्ला मन इत्तखज़ा इंद रहमान अहदा, शफात करने वाले शफात करेंगे, शफात होगी वहां पर, लेकिन उसके लिए जिसको इज्ने खुदा हो, जिसको खुदा ने इजाजत दी हो, जिसको खुदा ने ताकत दी हो, या जिसके पास क्या हो आहद हो परवरदिगार का। या दूसरी जो आयत है वला यशफाउन इल्ला लिमन इरतवा, जो जिसका दीन मर्जी खुदा हो, खुदा उसके दीन पर राजी हो, पसंदीदा हो उसका दीन, तो ये शख्स क्या है, शफात कर सकेगा। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आयात शफात की मिसाल आयात इल्म गैब है, आयात रिज्क है, आयात इज्जत है। जहां कहते हैं अन्नल इज्जत लिल्लाह जमीआ, वहां पर कहते हैं अन्नल इज्जत लिल्लाह वले रसूल ही वले मोमिनीन। तो यहां पर नतीजा ये निकलेगा कि यहां जहां मुनहसिर किया गया है आयत को कि शफात का हक फकत खुदा को है, मिन दून ही, ठीक है, उसके अलावा खुदा के अलावा कोई शफी और हामी नहीं है, तो माना यह है कि बिज़ात मुस्तकिल तौर पर वो खुदा की मिल्कियत में है
सही,
शफात।
उन्हीं का हक है।
लेकिन जो दूसरे गैर खुदा आएंगे, अंबिया और औलिया, गैर खुदा से बुरा आम मुराद नहीं, अंबिया होंगे, औलिया
अलिया
होंगे,
होंगे
मलाइक
बिल्कुल।
होंगे, आइम्मा होंगे, मासूमीन होंगे, वो शफात करेंगे। कुरान मजीद, नमाज, रोज़ा, सदकात, खैरात, ये सब शफात करेंगे। तो खुदा ने इनके अंदर ताकत रखी है, उस इज़्ने खुदा है इनके पास, तब जाकर ये शफात करेंगे। बस इस्तकलाल तौर पर यानी मुस्तकिल तौर पर वो खुदा के पास है शफात, और इज़्ने परवरदिगार के साथ, रज़ायत परवरदिगार के साथ, जो अंबिया हैं, औलिया हैं, उनके यहाँ भी वो भी शफात कर
कर
सकेंगे।
सकते हैं सही। तो एक सवाल यहाँ पे जहन में आ रहा है कि जैसे आपने इशारा किया कि वो बुतों से मसलन शफात चाहते थे, तो आजकल देखने में मिलता है कि बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जैसे बुत परस्त है काफ़ी दुनिया में अभी भी, तो बुतों की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, और जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इबादत नहीं करते, हम तो उस अल्लाह की इबादत करते हैं जिसने हर चीज़ को खलक किया है, और इनको तो हम बतौरी शफी करार देते हैं, खुदा के यहाँ वास्ता करार देते हैं। तो हमारे यहाँ जो तसव्वुर है शफात का, इस्लामी तसव्वुर,
इस्लामी तसव्वुर दोस्त,
उसका क्या फ़र्क है उस तसव्वुर के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस अकीदे के साथ जो हिंदुओं के दरमियान पाया जाता है, जो बुत परस्तों के दरमियान पाया
दोस्त
जाता
है,
है, इसकी थोड़ी बहुत वजाहत फरमाएं ताकि
बहुत बेहतरीन
ये
सवाल
वाज
है
हो,
आपका, ये बहुत अच्छा सवाल
और
है।
इसके बाद भी कोई शिबाहत है, चूंकि वक्त में कमी है
बिल्कुल
तो
मुख्तसर
इसको
मैं इसको
मुख्तसर
अर्ज करता
जाए।
हूँ। इशारा मैंने कर दिया है कि शफात जो इस्लाम में है, या शफात जो दूसरे मजाहब कहते हैं, हिंदू कहते हैं या दूसरे बुत परस्त कहते हैं, वो भी कहते हैं हा उला शफाना
शफान
ले युकरिबून इलल्लाह ज़ुल्फ़ा, हम कुर्ब खुदा चाहते हैं, वो भी यही कहते हैं। लेकिन यहां पर यह है कि क़यामत के दिन ला यमलिकून अशफाता इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, जिसको खुदा ने इजाजत दी हो, जिसको खुदा ने कुदरत दी हो, वो शफात कर सकेगा। हमारे और उनके दरमियान फर्क यह है कि हम कहते हैं कि ये जो हमारे शफात करेंगे इस्लाम में, खुदा ने इनको ताकत दी है, कुदरत दी है,
सही,
इज़्न खुदा के जरिए से ये क्या करेंगे, वहां पर शफात
शफात
करेंगे।
करेंगे
मुस्तकिल भी नहीं है,
सही,
मुस्तकिल भी नहीं है ये, वो कहते हैं हमारे बुत खुद मुस्तकिल हैं, असलन की खुदा के इज़्न की भी जरूरत नहीं
जरूरत
है,
नहीं।
इजाजत की
आप अगर
जरूरत नहीं
इजाजत
है।
दें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी गुफ्तगू से मुस्तफिज होते हैं। तो नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं आप राह निजात, वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और गुफ्तगू हो रही है शफात पे, आइए साथ दीजिए। जी आप फरमा रहे थे कि उनके यहाँ अकीदा यह है कि वो कहते हैं मुस्तकिल है ये, मुस्तकिल तौर पे
वो
शफात।
मुस्तकिल शफी करार देते हैं बुतों को, या फरिश्तों को भी अगर करार देते हैं, या अंबिया को भी वो शफी करार देते हैं, तो वो उनको मुअस्सर समझते हैं मुस्तकिल तौर पर कि ये हमें छुड़ा देंगे, वहाँ पर क़यामत के दिन जहन्नम से निकाल देंगे। मसीहियत के जो उलमा थे, ईसाइयों के जो उलमा थे, उन्होंने जो माना किया है शफात का, और एक अजीब जो माना किया है जिसकी वजह से इस्लाम से उनका बहुत ज़्यादा फासला हो गया है, वो यही था। उन्होंने कहा कि जो भी आपने काम अंजाम देना है अंजाम दे, हम क्या है क़यामत के दिन शफात
शफात
करेंगे,
करेंगे
लिहाजा जब शफात मौजूद है ज़ाहिर है वो जो भी अमल अंजाम दे उन्हें कोई खतरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हम कहते हैं नहीं, इस्लाम में शफात है, लेकिन हर आदमी और हर इंसान और हर शय शफात नहीं कर सकती है, एक उसके लिए इज़्न खुदा, अहद खुदा की ज़रूरत है, रिजायत खुदा की ज़रूरत है। दो, उसका जो दीन है वो भी दीन पसंद खुदा हो, लिहाजा ये दोनों चीज़ें उसकी क्या हों, खुदा की जानिब से हों।
इन्हें हर चीज़ खुदा की जानिब से, और खुदा का ये हक है, वो दे सकता है
उन
उन
लोगों
लोगों
को
को, उन
दे,
अंबिया
जी
को, अंबिया
अम्बिया को
को
दे,
जिनके,
अम्बिया को दे।
सही।
वो जो रिवायत है, मैं आपके सामने एक रिवायत पढ़ता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हक में फरमाया गया है, फरमाते हैं कि अल आइम्मतो इल्ला मन दान अल्लाह बे विलायत अमीरुल मोमिनीन वल आइम्मत मिन बाद ही फहुवल अहद इंद अल्लाह,
सही,
विलायत अहल बैत अहद परवरदिगार
आहद
है, वो जो
पर
आयत में था मन इत्तखद इंद रहमान अहदा, या दूसरी जो आयत इसमें
अगर
आयत
आप
के जर
इजाजत दें तो, यानी मेरे ख्याल से नाजरीन को जवाब मिल गया होगा। और कुछ सवालात हैं जो मैं
जी
पूछना
बिल्कुल
चाहता हूँ इस मुख्तसर से वक्त में। जैसे आपने इशारा किया कि मसीहत के यहाँ कहा गया कि आप जो कुछ करना चाहते हैं कीजिए, फिर जो है आखिर में कयामत के दिन आपको हम शफात करेंगे,
शफा दें,
तो क्या यहाँ पे भी ऐसा नहीं है? अब घुमा फिरा के
खुद
हम बात
हमारे
कर रहे
मुसलमानों में
हैं, खुद हमारे मुसलमानों के दरमियान भी
ठीक है
कहते हैं भाई कल तो शफात होनी है, शफात तो मिलेगी, शफात हमारे हक में है, हम दोस्तदारे अहल बैत हैं, हम दोस्तदारे अंबिया है, खुदा है, चलो आजकल गुनाह कर देते हैं, फिर आखिर में देखते हैं कयामत के दिन हमारी सिफारिश की जाएगी।
जी
ये एक
बिल्कुल
तरह से तरवीज नहीं हो रही है गुनाहकारी की? गुनाहों
जी
पे उकसाया जा रहा है इस तरीके से हम।
जी बिल्कुल, इसका ये भी सवाल, ये हम पर भी ये सवाल आता है और इस सवाल की जगह है यहाँ पर। एक ये है कि जुरअत इससे पैदा हो
पैदा हो
गई जरी
जाए,
शख्स में, और दूसरा ये है कि कानून का फायदा नहीं है असलन, जजा और सजा का फिर फायदा नहीं आखिर में, जब ये इतनी कानून बनाया गया है, इज्तिमा बनाया गया है, जो रियायत नहीं करेगा कल को फिर भी उसने बहिश्त में जाना है, तो जाहिर है इस ना कानून का फायदा रहेगा और ना कोई शख्स अपने
शख्स
उस
को
अमाल पर बाकी रह सकेगा। इसका जो जवाब दिया जा सकता है वो ये है कि शफाअत इससे, इसका एक नकदी जवाब देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह मगफिरत का जो खुदा ने वादा दिया, इन्नल्लाह यगफिरो ज़ुनूब इल्ला, जो शिर्क के बारे में आया था, खुदा जो है शिर्क के अलावा सबको बख्श
सबको बख्श
देगा,
देगा।
बस मगफिरत पर भी ये बात आती है, तो उससे भी इंसान में जुरत पैदा होगी, जो जवाब उसका होगा ये जवाब भी यहाँ पर होगा। और इसका जो हल्ली जवाब है, असली जवाब है इसका, वो ये है कि हम तीन जो मरहल आप खिदमत में आती, एक ये है कि हुकूमत खुदा को तस्लीम करता हो, कानून खुदा को तस्लीम करता हो, जो जजा और सजा है उसको भी कबूल करता हो, फिर अगर उसने आमाल अंजाम नहीं दे सके हैं तो वहां पर उसकी सिफारिश के लिए अंबिया औलिया आएंगे, और जो शख्स असलन कबूल ही नहीं करता है लिहाजा उसकी शफात नहीं होगी। जालिमीन, काफिरीन, फिरौनियान, यजीदियान, ये जो कहते हैं जनाब मगफिरत है, तौबा का दरवाजा खुला है, बस यजीद
बिल्कुल
को भी शामिल हो जाएगी तौबा, शफात अगर है तो उसके लिए भी शामिल हो जाएगी, जिस तरह शफात करने वाले के लिए शरायत है, इसी तरह जिसकी शफात होगी उसके भी शरायत
शरारत।
है, हर आदमी के लिए शफात नहीं होगी। वो यह है कि उसका दीन पसंद खुदा हो, इल्ला मन इरतजा रजायत रजीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम वो दीन है कि जो पसंद है खुदा दीन है। बस यहां पर इस शफात से गुनाहगार में उम्मीद की किरण रोशन होती है, ना यह है कि जरी को जुरअत हो, इसलिए कि पिछले उस जलसे उस प्रोग्राम में भी इशारा किया था मैंने इस जवाब की तरफ कि शफात करने वाला भी और जिस गुनाह की शफात होगी ये दोनों मालूम नहीं है, शख्स जिसकी शफात होगी ये भी मालूम नहीं है,
सही,
लिहाजा मुझे मालूम नहीं है कि कल को मेरी शफात होगी या नहीं होगी, अगर होगी किस गुनाह की शफात होगी।
लेकिन एक मसला ये भी है ना, जैसे आपने रवायत की तरफ भी इशारा किया था पिछले प्रोग्राम में भी, आज भी, कि अहले कबायर की जिन्होंने गुनाहानी कबीरा किया, तो उनको तो मालूम है कि हमारी शफात होगी, फिर क्या फायदा?
ना शफात असलन है ही अहले कबायर के लिए, लेकिन
वही
जो
ना, जो जो
पशेमान
कबीरा
है
कबीरा करते रहेंगे, जो
जी
गुनाह कबीरा अंजाम देंगे, उनकी
ना
शफायत
जो
होने वाली?
इसरार, हाँ अब बताइए, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर सवाल किया, यहाँ पर रिवायत में है कि जो शख्स इसरार करेगा गुनाह पर वो काफिर है, वो जालिम है, उसकी शफात नहीं होगी। खुद इमाम काजिम अलैहिस्सलाम से साहिल ने पूछा कैसे काफिर है वो, और अहले कबैर जो पशेमान हो उसको शफात शामिल हो जाएगी, जो अहले कबैर पशेमान ना हो उसको शफात शामिल नहीं, ये कैसे? मौला ने फरमाया कि पशेमानी खुद तौबा है, अनद मिन तौबा,
तौबा,
पशेमानी खुद तौबा है, लेकिन जो पशेमान नहीं है जाहिर है वो कुफ्र पर अपने उसका ईमान नहीं है,
और हतमी जरूरत
और
यह है कि जिसने ये कबीरा अंजाम दिया उसने अमदी तौर पे ये
आमदी पर नहीं
नहीं
दिया है
किया है।
उसने, पशेमान है, और अल्लाह तबारक फरमाते हैं ये जो पशेमानी है ये इस्तलाही तौबा नहीं है, वइला इस्तलाही जो तौबा है वो खुद शाफियान में से है, खुद इस्तलाही तौबा शफात करेगी क्यामत के दिन। ये कबीरा वाला शख्स जो बगैर शफा तौबा के जाएगा तो पैगम्बर इस्लाम उनके लिए शफात करेंगे।
एक और सवाल, ये जो मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, बाज़ लोग कायल इस बात के हैं कि हालांकि आपने आयत की तरफ भी इशारा किया, 7 किस्म की आयतें आपने यहाँ पे पढ़ी और अच्छी तरह से वजाहत की कि बाज़ आयतों की बाज़ आयत से तफसीर होती है और फिर हम नतीजा निकालते हैं कि खुदा के अलावा और भी अफराद हैं जो शफात कर सकते हैं। लेकिन बाज़ मुसलमान यानी मुसलमानों के ग्रोह में कुछ अफराद है कि जो कायल है कि नहीं भाई, जो शफात करेगा वो अल्लाह ही करेगा और अल्लाह के सिवा किसी को हक नहीं है, इसको किस हद तक हम माने?
इब्ने तैमिया और उनकी जो पार्टी है हमारे मुसलमानों में, इस वजह से कि अगर हम अच्छा गुमान भी करें, यह है कि अहल बैत के दरवाजा अगर आदमी छोड़ दे, जहर है उसको गैर अहल बैत और गैर रसूल के
एक
दरवाजे पर
आपकी
दाखिल
खिदमत में
करेगा।
अर्ज करूं, 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं।
मैं 1 मिनट का ही जवाब अर्ज करता
सही
हूँ। ये लोग कहते हैं असल शफात को कबूल करते हैं इसलिए कि कुरान में आयत है,
आया था,
कहते
बिल्कुल।
हैं कि अगर आप अंबिया और लिया से दरख्वास्त नहीं कर सकते हैं शफात की, बल्कि आप दुआ मांगे कि खुदा पैगंबर को हमारा शफी बना दे। इसका जवाब मुख्तसर मैं याद करता हूं कि आयात सरीह है कुरान के ये खिलाफ है, जहां कहते हैं या अबा नस्तगफिर लना जुनूबना,
ज़ुनूबना
हजरत याकूब की औलाद कहती है कि तू हमारे लिए इस्तगफार कर, तो वो खुद सराहतन उनसे मांग रहे हैं, या वस्तगफर लहुम रसूल, खुद रसूल उनके लिए शफात करता है।
शफात करे
ऐसा नहीं कि हम
उसके
जाएं खुदा के पास, खुदा ने इनको इज्न दिया है, यानी खुदा ने अपना नुमाइंदा बनाया है,
बनाया,
तो
वसीला
फिर
बनाया
वसीला
अपना,
बनाया है, लिहाजा हमें वसीले को और शफात को समझना
समझना
होगा।
होगा।
समझने से पहले किसी पर किसी फतवे लगाने की हमें जरूरत नहीं
नहीं,
है।
बहुत बहुत शुक्रिया महदवी साहब, बहुत ही अच्छे मतालब थे
शुक्रिया
और बहुत ही आपने जहमत फरमाई है, चूंकि
शुक्रिया
आइंदा अगले में इंशाल्लाह जो प्रोग्राम होगा, चूंकि रमज़ान शुरू हो रहा है और
जी,
इंशाल्लाह इस सिलसिले का
ये
फिलहाल ये आखिरी प्रोग्राम
ये
था,
वैसे भी
हम आपके
मुख्तसर
बहुत
होता
पीछे।
है टाइम
बिल्कुल
इसमें,
बिल्कुल,
दोस्त मुताला करें खुद।
मुताला करें तो और
जी
भी अच्छे
बिल्कुल, ये
मतालब
तो
उनको मिलेंगे।
कतरा या दरिया है ये
बिल्कुल,
प्रॉब्लम। जी
शुक्रिया आपका।
शुक्रिया।
तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा राह निजात, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी तजावीज़ और आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़िज़ फरमाइएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।